प्रभु जी को ज्यादा ग्लोरीफाई कर देते हैं, लाइक वो नहीं देते हैं। और बाय द वे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं था, स्ट्रक्चर इंजीनियर था। नहीं, स्ट्रक्चर की तरह हार्ड। तो आज भगवान वराहदेव का आविर्भाव दिवस है, तो जो श्लोक लिखा दशांतर स्तोत्र से पढ़ेंगे। वसती दश निश खरे धरनी तब लगना, शशनी कलंक कलेव निमग्ना, केशव त्रेता शुकर रूपा, जय जग जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे,
जय जगदीश हरे।
इसका अनुवाद है, हे केशव, हे जगदीश, हे वराह का रूप धारण करने वाले श्री हरि, तुम्हारी जय हो। जो पृथ्वी ब्रह्मांड के तल पर गर्भोदक सागर में डूब गई थी, वे चंद्रमा पर धब्बे के समान तुम्हारे दांत के अग्र भाग में स्थित रहती है। चंद्रमा पर धब्बे के समान, तुम समझ सोच भी नहीं सकते कि वराह देव का जो साइज है वो कितना बड़ा होगा। पूरी पृथ्वी चंद्रमा के जितना धब्बा है उस तरह उनके दांत के अग्र भाग में, नहीं इमेजिन भी नहीं कर सकते। नहीं तो बहुत ही सुंदर अद्भुत कथा है। एक बार चार कुमार जो है वैकुंठ लोग गए, तो चार कुमार तो चार साल के बच्चे की तरह रहते हैं, सिर्फ चार दिशाओं से कवर्ड। तो वैकुंठ लोग पहुंचे, सात द्वार हैं, छह द्वार तो आराम से पार कर लिए, किसी ने रोका नहीं, कोई था ही नहीं वैकुंठ में, कोई डीमन सोने वाले ने, यहां हमें सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत पड़ती है कृष्ण को। पर सातवें द्वार तक पहुंचे तो दो द्वारपाल थे, जय और विजय, ऐसा बताया गया कि उनकी आंखें लाल थी, थोड़ा थोड़ा सा परेशान से लग रहे थे। तो उन्होंने जो है चार कुमारों को कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते, रोक दिया। अब चार कुमार हैं, हालांकि पूरी तरह से सेल्फ रियलाइज्ड सोल्स हैं, ब्रह्मा जी के पहले पुत्र हैं, इनको भी गुस्सा आ गया। जैसे भक्तों में भी होता है ना, कभी फास्टिंग की हो फिर प्रसाद के लिए कोई रोक दे। कितना बड़ी तपस्या की हो फास्टिंग के टाइम, चैंटिंग आवाज नहीं आ रही। ठीक है, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, स्ट्रक्चरल इंजीनियर वाला रूप दिखाना पड़ेगा। तो उनको रोक दिया गया, तो गुस्सा आ गया, तुम लोग जो है भेदभाव करते हो, अपने पराए का फर्क देखते हो, शत्रु मित्र की तरह देखते हो, तुम लोग जो है हारमोनी में नहीं हो, वैकुंठ में रहने के लायक नहीं, इसे पृथ्वी पर जाओ। और जय विजय को भी दुख लगा कि हमने क्या कर दिया, कैसे हो गया ये हमसे अपराध, तो उनके चरणों में गिर गए कि हमें माफ करो। तो उसी समय भगवान विष्णु जो है वहां पर आए, और भगवान आए, पता था कुछ तो गड़बड़ हो गई। चार कुमारों को उन्होंने कहा कि क्योंकि ये मेरे सेवक हैं, इनसे गलती हुई, सेवक की गलती जो है मास्टर की गलती मानी जाती है, कि मेरे से गलती हुई है, और मैं तो वैष्णवों की साधुओं की इतनी प्रशंसा करता हूँ, मैं वो चीज़ मेरे को पसंद नहीं जो मेरे को खिलाई जाए, पर जो चीज़ ब्राह्मणों को खिलाई जाती है उनके मुख से मैं खाता हूँ तो मैं संतुष्ट होता हूँ। और मेरे में भी जो भगवान विष्णु कह रहे हैं कि मेरे में भी जो पावर है कुछ भी वरदान देने के लिए, वो इसलिए है क्योंकि वैष्णव की कृपा मेरे को मिलती है, भगवान विष्णु ऐसा कहते हैं। तो इन दोनों ने आपके प्रति अपराध किया है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अब चार कुमार वैसे तो ब्रह्मवादी थे, उसमें ध्यान था, पर जब भगवान विष्णु को इस तरह देखा और विष्णु ने उनको प्रणाम किया, वो चार कुमारों ने भी विष्णु को प्रणाम जब किया तो उनके चरण कमल पर जो तुलसी लगी हुई थी उसकी सुगंध सुगने से ही वो लोग वैष्णव बन गए। भगवान के प्रति एक तो आकर्षित हो गए थे उनका रूप देख के, उनका उनके जिस तरह बोल रहे थे, और फिर जब तुलसी सुनगी तो वैष्णव बन गए। चार कुमार भी कहते हैं कि हमें भी समझ नहीं आ रहा हमने ऐसे क्यों इनको दंड दे दिया, तो आप मुझे माफ करना चाहो तो आप इनको माफ करो। वो भगवान ने कहा नहीं 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 इनको नहीं, आपने कहा है तो हम पूरा करेंगे, तो इनको दंड तो मिलेगा। तो गौर गोविंद महाराज एक बार अपने प्रवचन में बता रहे हैं कि भगवान में भी लोभ आ जाता है। हम लोगों में तो लोभ है ही है, गाने को तो हम रोज सुबह सुबह गाते हैं शिक्षाष्टक में, ना धनम ना जनम ना सुंदरी कविता वा जगदीश, पर होता क्या, प्लेंटी ऑफ धन मिले, प्लेंटी ऑफ फॉलोअर्स हो, सुंदरी तो चलो ना भी हो चले नहीं, बहुत सारे नॉलेज भी तो हो ना, ताकि फॉलोअर्स भी तो चाहिए, लोग तो है, पर ओरिजिनली लोग तो भगवान में है ना, तभी तो वहां से यहाँ आते। हमारा परवर्टेड फॉर्म होता है, विकृत रूप ले लेता है, पर ओरिजिनल तो लोग भगवान में भी है। तो भगवान में भी लोग था कि विष्णु ने भी सोचा बहुत दिन हो गए लेटे लेटे, कुछ हाथ में खुजली हो रही है, कुछ लड़ाई कर ली है, कुछ हुआ नहीं है लक्ष्मी जी से लड़ाई कर नहीं सकते तो हार जाऊंगा तो उनके मन में लोग आया कि कुछ लड़ाई की इच्छा हो रही है, अब भगवान लड़ना चाहेंगे तो हम जैसे लोगों से लड़ नहीं सकते तो अपने ही जैसे भी प्रतिद्वंद्वी भी चाहिए, तो उन्हीं का कोई स्पेशल भक्ति है जो उस लेवल पे आ सकता है लड़ने के लिए। तो इस विष्णु द्वारा ये सारा ऑर्केस्ट्रेटेड था कि जय विजय को ही उसने प्रतिद्वंद्वी बना के भेजना, क्योंकि जय विजय भी नहीं समझ पा रहे थे कि हमारे मन में चार कुमारों के प्रति ये भावना किस तरह है, और चार कुमार नहीं समझ पा रहे थे कि हमारे मन में इनके प्रति ऐसा क्यों हुआ, हमने क्यों उनको श्राप दे दिया। वो तो अपनी सेवा कर रहे थे और थोड़ी कुछ कर रहे थे। वो भगवान विष्णु ने कहा एक्चुअली इन्होंने एक बार लक्ष्मी जी को भी रोक दिया था, जब मैं सो रहा था तो लक्ष्मी जी ने इनको श्राप दिया था कि एक दिन तुम दोनों गिरोगे तो वो भी पूरा करना था श्राप। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है जय विजय तुम जाओ, तो दो ऑप्शन है, या तो सात जन्म एज भक्त या तीन जन्म एज डीमन असुर, पर दोनों ही केस में मेरे को भूलोगे नहीं। तो उन्होंने कहा तीन जन्म डीमन के रूप में ठीक है, हम जल्दी से वापस अपनी सेवा में आ जाएंगे, इतनी इंपॉर्टेंट है सेवा भगवान की, हमें सेवा मिलती है वह कहीं देखो अभी जो मायापुर जाने का मौका मिलेगा तो प्रभु जी कहेंगे नहीं अच्छा एक दो दिन पहले चलते हैं थोड़ा धाम के और दर्शन हो जाएंगे, और फिर आते वक्त भी एक दो दिन बाद आ जाएंगे ना, क्या है गौर पूर्णिमा में तो अभी टाइम है, उससे एक दिन पहले आ जाएंगे सेवा से हम भागना चाहते हैं, पर जय विजय नहीं, हम तीन जन्म जब खत्म करें फटाफट ताकि अपनी सेवा में आए। तो तथास्तु। और उसी समय क्या हुआ, जय विजय फिर हालांकि ऐसे बताया वैकुंठ से कोई गिरता नहीं है, पर इनको स्पेशल सेवा दी गई थी तो ये गिरे। और उसी समय क्या हुआ कि कश्यप मुनि और उनकी पत्नी दिति, तो somehow शाम का समय था और दिति के मन में भाव आया कि मुझे पुत्र चाहिए, और कश्यप मुनि के पास गए कि मेरे को पुत्र चाहिए। कश्यप जी ने कहा कि ठीक है तुम्हारी इच्छा ठीक है, पर ये समय ठीक नहीं है, इस समय जो है शिव जी जो है अपने जो उनके पार्षद हैं भूत प्रेत इनके साथ घूमते हैं, तो इस समय जो संबंध करता है तो शिव जी ऐसे ऐसी ऐसी आत्माओं को उनके घर में डाल देते हैं उस माता के। अब दिति बोली नहीं मेरी जो अर्ज है बहुत स्ट्रांग है, आप अपने शरण में किसी की बात नहीं ठुकरा सकते हैं, आप मेरी अर्ज पूरी करिए। कश्यप मुनि ने सोचा कि हो सकता है भगवान की कोई इच्छा हो, हालांकि प्रभा लिखते हैं कश्यप मुनि एक्टेड लाइक अ हैंड पैक्ड हस्बैंड, ब्रह्मचारी को नहीं पता है इम्पैक्ट हस्बैंड क्या आता है, पता करने की जरूरत भी नहीं। मतलब जो अपनी पत्नी की सारी बातें मान जाता है। तो उस समय जो कश्यप मुनि ने दिति के साथ संबंध बनाया, और जब संबंध बनाया और फिर दिति जो है उनको लज्जा आई, खराब लगा कि मैंने क्या कर दिया, कि इस समय शिव जी के प्रति अपराध कर दिया, शिव जी जो इस समय घूमते हैं। तो दिति ने प्रार्थना की शिव जी से कि शिव जी आप मुझे माफ करिए, आप तो मेरी बहन के पति हैं, क्योंकि शिव जी भी दक्ष की लड़की से उनकी शादी हुई है और ये दक्ष कन्या 13 कन्या जो है उनकी कश्यप मुनि से शादी हुई थी, तो आप तो मेरी बहन के पति हैं, आप मुझे माफ करिए, आप तो बहुत दयालु हैं। और फिर कश्यप मुनि के पास आई कि मेरे से गलती हो गई। तो कश्यप मुनि ने कहा क्योंकि हमने गलत समय पे संबंध बनाया है, तो इसलिए तुम्हारे घर में जो है दो पुत्र जन्म लेंगे और बहुत बड़े असुर होंगे, बहुत ही बड़े टेररिस्ट होंगे, पूरे ब्रह्मांड में अपना आतंक फैलाएंगे, वैष्णवों को तंग करेंगे, मारेंगे जानवरों को, मारेंगे पूरे ब्रह्मांड में गड़बड़ करेंगे। तो दीदी को खराब भी लग रहा था, उसने माफी मांगी। तो कश्यप मुनि ने कहा ठीक है, क्योंकि तुम्हें ग्लानी है और माफी मांग रही हो, तो ये दोनों पुत्र जो हैं भगवान स्वयं इनका वध करेंगे, और इनका जो पुत्र होगा एक आगे वो बहुत बड़ा भक्त होगा, वो भक्त लोगों पर बहुत करुणा करेगा, भगवान का बहुत ही उच्च कोटि का भक्त होगा। तो दीदी कहती है कि चलो पुत्र तो ऐसे होंगे, पर कम से कम वो ब्राह्मणों के श्राप द्वारा नहीं मारे जाएंगे, कम से कम उनको मारने के लिए भगवान खुद अवतार लेंगे, क्योंकि ब्राह्मणों के श्राप से, क्योंकि वो कश्यप मुनि ने कहा नहीं ब्राह्मणों के प्रति भी अपराध करेंगे, बहुत आतंक चलाएंगे। पर दीति ने कहा कम से कम ब्राह्मणों के श्राप से मरने, तो ब्राह्मणों के श्राप से अगर मारे जाए तो वो व्यक्ति जो है नर्क में जाता है और नीचे अधम योनियों में ही जन्म लेता रहता है, कम से कम भगवान द्वारा मारे जाएंगे जिनका उद्धार ही। तो जय और विजय जब आ रहे थे तो वही जय और विजय जो है दीति के घर में प्रवेश किया। तो पहला जो बच्चा बाहर आया वो था हिरण्याक्ष, और दूसरा आया वो हिरण्यकशिपु। और उधर प्रभुपाद बताते हैं कि हिरण्यकशिपु जो थे वो बड़े भाई थे, जो पहले आया वो बड़ा नहीं था, जो बाद में आया वो बड़ा था, क्योंकि लॉजिक ये है जो सोल पहले एंटर हुई है वो बाद में आएगी। तो जुड़वा बच्चों में एक, वैसे गुड़गांव में एक प्रभु जी के हैं जुड़वा बच्चे, तो उन दोनों में हमेशा जो लड़की है छोटी है टेक्निकली वो हमेशा नाराज रहती है, मैं छोटी हूँ ये बड़ा है धौंसे माता है। तो प्रभु जी उसको भी समझती तो पहले गई थी इसलिए बाद में आई है, तो तू टेक्निकली तू बड़ी है पर ये पहले आया तो यस बायोलॉजिकली ये बड़ा है, तो दोनों को खुश रखते हैं हर कोई बड़ा बनना चाहता नहीं तो हिरण्याक्ष जो पहले आए बाहर, और हाँ दीति माता के गर्भ में ही थे दोनों, तो उसी समय जो है हालांकि अभी गर्भ में है, और दीति को चूंकि पता था कि दोनों बहुत बड़े राक्षस होने वाले, उन्होंने अपने घर में 100 साल तक इन दोनों को रखा, बाहर नहीं आने दे रही थी। पर जब गर्भ में थी, गर्भ में थे दोनों, पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा रहा था, इतना ज्यादा इग्नोरेंस बढ़ गया था, देवी देवता तक दुखी हो गए थे। अभी तक गर्भ में थे, अर्थक्वेक्स आने शुरू हो गए, जानवर जो है जैसे गाय जो है खून थनों से खून निकलने लग गया था, और अलग अलग ग्रह जो है प्रकट हो रहे थे। अभी ये गर्भ में है, अभी कुछ किया नहीं, बाहर भी नहीं निकल। जिसका दुर्योधन भी जब पैदा हुए थे तो बताते ना गधे रेंगने लग गए थे और खराब खराब ओमेंस आने शुरू हो गए थे, अपशगुन होने शुरू हो गए थे। तो विदुर जी ने कहा था इसको मार दो, धृतराष्ट्र ने कहा था वो नहीं माने। अब बात भी है कि दुर्योधन ने अपना पार्ट प्ले करना था, दुर्योधन नहीं होता तो महाभारत नहीं होती, तो गीता नहीं मिलती। तो विदुर जी ने कहा था ये अपशकुन, ये लड़का तुम्हारे कुल का नाश कर देगा, उसी से कहा था धृतराष्ट्र से, नहीं माने। तो ऐसे 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 जब जीव आते हैं वो गर्भ के अंदर से ही पता चल जाता है, कहते ना भूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। ऐसे भूतों के पांव तो गर्भ से पता चल जाते हैं। तो उसी समय फिर सारे देवी देवता भी डर के मारे ब्रह्मा जी के पास गए कि ब्रह्मा जी ब्रह्मांड में हो क्या रहा है। तो ब्रह्मा जी ने समझाया भगवान की लीला है, अब ये दोनों आ गए हैं, ये उत्पात तो मचाएंगे पर कुछ नहीं, भगवान स्वयं प्रकट होकर इनका नाश करें। तो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष पैदा हुए, तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, वरदान मांगे, और दोनों को वो हिरण्याक्ष को भी वरदान मिला कि तुम्हें कोई हरा नहीं सकेगा, और अलग अलग हिरण्यकशिपु के वरदान तो क्या बाद में मिले थे उनको। और हिरण्याक्ष जैसे पता है पूरे यूनिवर्स में पूरे ब्रह्मांड में टेरर फैला रहा था, उसको देखते ही सब देवी देवता भाग गए थे। तो गया इंद्रलोक में, गया इंद्रजीत गायक थे तो उनके आसन पे बैठ गया कि मैं ही राजा हूं। और फिर एक दिन खेलते खेलते घूमते घूमते पृथ्वी पे आए, पृथ्वी से उन्होंने सोना निकाल लिया सारा, पृथ्वी के अंदर जो है सोना निकाल लिया, तो पृथ्वी जो है अपने ऑर्बिट से निकलकर गिरकर गर्भोदक सागर में चली गई। उधर ब्रह्मा जी ने मनु को बोला था कि आप जो है पृथ्वी पे मानव जाति की रचना करो। मनु ने कहा रचना कहाँ करो, पृथ्वी कहाँ है? ब्रह्मा जी तो है कहाँ है? तो गई। और ब्रह्मा जी दुखी, मनु भी दुखी, ब्रह्मा जी इतने दुखी हो गए और प्रार्थना करने लगे भगवान से, अब मैं क्या करूं, सृष्टि करनी है, रचना करनी है, पृथ्वी तो है नहीं। तो इतने दुखी थे तो ब्रह्मा जी के नाक से एक छोटा सा बोर या सुअर जो है प्रकट हुआ, और देखते ही देखते पता चलता है कि अंगूठे के अग्रभाग के समान था, और देखते ही देखते जैसे प्रकट हुआ खूब बड़ा विशाल है पर्वत के समान उसने रूप धारण कर लिया। अब ब्रह्मा जी देख रहे, मनु देख रहे, सारे देवी देवता भी देख रहे क्या हो रहा है। तो उनके लगा होना हो भगवान स्वयं ही है, सबने स्तुति की और वराहदेव सब प्रकट हुए आज के दिन, वराहदेव भगवान की। तो वराहदेव ने कहा आप चिंता ना करें, पृथ्वी को मैं लेके आऊंगा। और वराहदेव गए गर्भोदक सागर के अंदर, और पृथ्वी जो एकदम नीचे थी रसातल में थी उसको उठाया, अपने दांतों पे रखा और पृथ्वी को लेकर वापस आ रहे थे। तो यही वो श्लोक है कि चंद्रम पर धब्बे के समान तुम्हारे दांत के अग्रभाग में स्थित रहती है। तो वराहदेव जो पृथ्वी को उठा के लेके आ रहे हैं, और वराहदेव जब प्रकट हुए, हालांकि ऐसा बताया गया स्वयंभुवा मनु के समय श्वेत वराह थे और चक्षुष मनु के समय लाल रक्त रंग के वराह थे, तो अलग अलग कल्पों की कथाएं हैं। तो पृथ्वी को इस तरह लेके आ रहे थे, जय श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की। तो वराहदेव इस तरह पृथ्वी को ला रहे थे, पर उससे पहले क्या होता है कि हिरण्याक्ष जो है पूरे यूनिवर्स में आतंक तो फैला रहे थे, घूमते घूमते वो समुद्र में भी गए, तैर रहे थे समुद्र में, सारे जो जलचर थे वो उनसे डर के भाग गए। तैरते तैरते वरुण देव के पास भी गए और वरुण देव से कहा कि मैं जो है युद्ध करना चाहता हूँ। वरुण देव ने कहा कि देखो मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे में इतना बल भी नहीं है कि तुमसे युद्ध कर सकूं, ऐसा करो तुम ना विष्णु जी के पास जाओ, वो तुम्हें युद्ध करेंगे और तुम्हें अच्छा सा सबक सिखाएंगे। हिरण्याक्ष अरे क्या डरता है, देवता है ये तो डर गया, पहले से डर गया। तो आ रहे थे, ढूंढ रहे थे, तो नारद मुनि हमारे इटर्नल स्पेसमैन तो है ही है, नारद मुनि मिले उन्हें, कहाँ विष्णु जी मिलेंगे, हाँ बस बहुत ही जल्दी गर्भोदक सागर में मिलेंगे, तभी युद्ध कर लेना उनसे। ठीक, तो जब भगवान वराह देव इस पृथ्वी को ऊपर लेके आ रहे थे तो हिरण्याक्ष वहां है गर्भोदक सागर के अंदर और ललकारा, वराह देव ने बोलता अभी ऊपर जा रहा, अरे कैसा तू जानवर है, तू सुनता नहीं है, युद्ध की ललकार सुन के भी भाग रहा है। वराह देव ने फिर भी नहीं सुना, चले ऊपर लेके आ, कैसा एम्फीबियस बीस्ट, पृथ्वी में रहने वाला जानवर है तू, क्यों भाग रहा, डर के मारे भाग रहा, आ युद्ध कर मेरे साथ, युद्ध कर। वराह देव खैर गर्भोदक सागर के ऊपर आए, पृथ्वी को रखा और उनकी फिर पृथ्वी को उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ दी जिससे वो फ्लोट कर सके और फिर वो घूमे हिरण्याक्ष की तरफ। वह हिरण्याक्ष ने कहा, क्या हम तो जल में रहने वाले जानवर हैं और तुम जैसे कुत्तों का हम शिकार करते हैं। वैसे किसी को अगर पिक्चर विक्चर देखने की इच्छा होती हो ना, श्रीमद् भागवतम पढ़ लेनी चाहिए, सारे सीन, सारे इमोशन, सारा ड्रामा इसके अंदर। लोग इच्छा थे लड़ाई झगड़ा देखने की, पिक्चरों के डायलॉग, शोले पिक्चर के डायलॉग बोले, सारे भागवतम में सब कुछ है, सब कुछ भागवतम से। हाल ही थोड़ा रिफाइंड तरीके से लिखा है इसलिए वो इमोशंस नहीं निकल के आते जैसे अगर शोले के डायलॉग सुन लो या किसी और पिक्चर के डायलॉग सुन लो, वो है सब कुछ इसमें। जैसे वो सुनने में या अच्छा सा लगता है ना, जब हीरो जो है हीरोइन को किडनैप कर लेता है तो कृष्ण और रुक्मिणी रुक्मिणी हरण की कथा सुन लेनी चाहिए। वो बड़ा जबरदस्त किडनैप किया, लड़ाई वड़ाई भी की, लोगों को मारा भी, किस रुक्मिणी का भी हेडशेप कर दिया था। तो सब कुछ है भागवतम में, पूरे इमोशंस है, जबरदस्त इमोशंस है। तो इस तरह इन दोनों के बीच में इस तरह पहले तो बातों का युद्ध शुरू हुआ, एक दूसरे को उकसा रहे थे क्योंकि युद्ध भी जो करना है थोड़ा गुस्से में तो आना पड़ेगा ना, तभी तो युद्ध हो सकता है, नहीं तो हरी बोल क्या युद्ध थोड़ी करेंगे। सीधी सी बात। तो एक दूसरे को भड़का मिले थे, फिर हिरण्याक्ष को भी गुस्सा आया, अपनी अपनी गदा निकाली, गदाओं से युद्ध हो रहा है। तो एक बार वराह देव, हालांकि वो तो अपनी लीला कर रहे हैं, उन्होंने अपने हाथ से गदा जो है गिर जाने दी, वो सारे देवी देवता भी देख रहे हैं क्योंकि मैच देखने में तो सबको मजा आता ही है। भाई मैच हो रहा हो और ऑडियंस ना हो तो मैच का भी क्या मजा। तभी तो यहाँ क्रिकेट का गेम होता था, इतने सारे लोग जाते हैं स्टेडियम में, नहीं तो सारे देवी देवता देख रहे हैं। और जैसे उनकी गदा जो है गिरते हुए दिखी तो सारे देवी देवता, अरे ये क्या हो गया, वराह देव की गदा गिर गई। और हिरण्याक्ष भी, ठीक है आप अपनी गदा उठाइए फिर युद्ध करेंगे, कि धर्म युद्ध हो रहा था ना। तो वराह देव ने गदा नहीं उठाई, उनसे कहा अपना सुदर्शन चक्र निकाल लिया। सुदर्शन देख के हिरण्याक्ष को और गुस्सा आया, फिर उसने आके जोर से अपनी गदा मारी और वराह देव ने मतलब गदा उसने फेंक के मारी थी, वराह देव ने बाएं हाथ से गदा पकड़ ली और रख दिया नीचे। हिरण्याक्ष को देखे, अरे आज तक तो किसी ने मेरे को इस तरह नहीं किया था, उन्होंने क्या बड़े आराम से गदा पकड़ लिया। और हिरण्याक्ष को, हाँ हिरण्याक्ष वापस दे दे, ले ले कहता नहीं चाहिए। फिर उसने अपना एक भाला निकाला, वो फेंका वराह देव के ऊपर, वराह देव ने सुदर्शन से उसको काट दिया। फिर हिरण्याक्ष, क्योंकि जितने भी असुर होते हैं मायावी शक्तियां बहुत ज्यादा होती है, तो गायब हो गया वहां से गायब हुआ और अलग अलग इल्यूजन्स उसने प्रकट करने शुरू कर दिए। खराब खराब चीजें आ रही हैं, राक्षस आ रहे हैं, बहुत कुछ आ रहा है। वराह देव ने अपना सुदर्शन चक्र भेजा, जो सुदर्शन है अच्छा दर्शन, ये सब माया तो रह नहीं सकती, सब माया तो गायब हो गई। फिर हिरण्याक्ष फिर आया, फिर युद्ध करने के लिए अब जी अब अस्त्र शस्त्र उठाए नहीं, अब बॉक्सिंग मैच शुरू हो गया। फिर बॉक्सिंग कर रहे, उसमें भी कुछ ज्यादा मजा नहीं आया। फिर हिरण्याक्ष आया, उनको वराहदेव को अपने बाजू में पकड़ के उसने सोचा मैं दबा दू। सबको वर्ल्ड रेसलिंग भी देखने का मौका मिलता होगा, WWF, तो ओरिजिनल WWF था। तो इस तरह दबा रहा वराहदेव को, देखा वराहदेव तो उसके हाथ से बाहर है। फिर लड़ाई शुरू हुई, फिर वराहदेव सब ब्रह्मा जी भी भगवान, अब संध्या का समय हो रहा है और इनकी ताकत जो है बढ़ जाती है उस समय, अब समय आ गया इसका विनाश कर दिया। ऐसा सुना वराहदेव ने मुस्कुराए और कुछ नहीं किया, अपने बाएं हाथ से हिरण्याक्ष के कान के नीचे जा हल्के से मार दिया। इतनी देर से सब लड़ाई हो गई, उसको मारा नहीं था, जरा ऐसे बाएं हाथ से, हाथ भी नहीं तो हुफ होता ना बरा के, तो हुफ उसे हल्के से मारो, गिर गया मर गया, मुंह से खून निकलने लगा, गिर गया और मर गया। और सब लोग जो है वहीं पे पुष्प वर्षा करने लगे, देवी देवता है कितना बड़ा काम किया। और वराहदेव घूमे, सबको देखा, आशीर्वाद दिया और अपने वैकुंठ लोक चले गए। शिवदेव गोस्वामी बताते हैं कि जो भी भगवान वराहदेव की इस लीला का पाठ करता है, श्रवण करता है श्रद्धा के साथ, तो उस पे जितने भी पाप हैं, इवन ब्रह्म हत्या का पाप है, वो भी खत्म हो जाता है। हालांकि वराहदेव वैसे मतलब भगवान जो है वराह के रूप में, सूअर के रूप में प्रकट हुए हैं, और सूअर को ये इतना इतना अच्छा जानवर नहीं माना जाता। किसी को अगर पदवी दी जाए कि तुम सुअर की तरह खाते हो, या सुअर की तरह रहते हो, सुअर की तरह दिखते हो, वो बड़ा बुरा लगेगा उसको। पर भगवान जब वराह के रूप में आते हैं, जैसे बताया कि जो देवी देवता भी उनका दर्शन कर रहे थे और उनके साथ जो उनकी अप्सराएं थी वो बेकार लग रही थी वराह देव के सामने। इतने सुंदर वराह के, और जब भगवान पृथ्वी को लेकर आ रहे थे ऊपर, तो जैसे हम रोज सुबह गाते ना अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, तो भगवान ने तो उनको तो अपने दांतों के अग्रभाग में रखा था पृथ्वी देवी को, तो उनके संपर्क से एक बच्चा भी पैदा हो गया। हालांकि वो लड़का बाद में जो है गलत संगत में पड़ गया था असुरों के, और बाद में वो भौमासुर या नरकासुर के नाम से विख्यात हुआ, जिसको कृष्ण ने आके मारा था, जिसने 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना के रखा था। वो भगवान के लड़का था पर गलत संपर्क, गलत एसोसिएशन में फंस गया था। इतना जरूरी है सही एसोसिएशन में रहना। भगवान का लड़का खुद जो है असुर बन सकता है, और भगवान जब पृथ्वी देवी को वापस ला रहे थे गर्भोदक सागर में से, तो पृथ्वी ने भगवान से पूछा कि मेरे को कहाँ स्थापित करेंगे, ये तो इतना बड़ा गर्भोदक सागर, ब्रह्मांड का जो आधा जो भाग है वो भगवान जो अपने पसीने से भर देते हैं उसको गर्भोदक सागर बोलते हैं। तो भगवान ने कहा तो ऊपर देखो, तो पृथ्वी ने ऊपर देखा तो एक बहुत ही बढ़िया हरियाल, मतलब ऐसे पृथ्वी का ही पार्ट लग रहा था, अच्छे सुंदर वृक्ष थे, गार्डन्स दिख रहे थे उसको। पृथ्वी ने ये कौन सी जगह है, भगवान ने कहा ये ब्रजधाम है। पृथ्वी ने कहा तो मेरे यहाँ लग रहा है ये ऊपर कैसे रह गया, मैं नीचे हूँ ऊपर। तो भगवान ने कहा ये तुम्हारा पार्ट नहीं है, तुम्हारे पार्ट की तरह लगता है ये ब्रजधाम है, इसका कभी विनाश नहीं है, तो तुम्हें वहां ले जाके जो है फिट कर दूंगा। तो ब्रजधाम जो 84 कोस में हम जाते हैं, तो वो जैसे होता है ना जिग्सा पजल की तरह, तो पृथ्वी में उतना भाग जो खाली था, जब पृथ्वी ऊपर गई तो वो फिट हो गया, तो उसका कभी विनाश नहीं होता, लगता है मैं पृथ्वी की तरह ही है, तो पृथ्वी का पार्ट नहीं है वो। तो भगवान ने पृथ्वी को वहां जाके एस्टेब्लिश किया। और हिरण्याक्ष ने जब बताया ना पृथ्वी से सोना निकाल लिया था तो पृथ्वी अपनी कक्षा से निकल के गिर गई थी, तो प्रभा जी वहां बताते हैं कि जिस तरह हम लोग भी ये आसुरिक प्रवृत्ति जो है पृथ्वी के अंदर से काला सोना जो निकालते जा रहे हैं पेट्रोल, उसकी वजह से भी गड़बड़ होगी, पृथ्वी जो है अपनी कक्षा से इधर से उधर हो सकती है, हो भी रही है, इसी वजह से ऋतुएं बदल रही हैं और सब गड़बड़ हो रही है। तो हमें अगर रहना है पृथ्वी के साथ ठीक से, पृथ्वी हमारी माता है तो हारमोनी में रहना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। नहीं तो जैसा हिरण्याक्ष ने किया उस पृथ्वी पे गड़बड़ होगी और भुगतना हम ही लोगों को पड़ेगा। तो पेट्रोल जो निकालते जा रहे हैं, पहले तो इस पेट्रोल को भी काला सोना बोला जाता था, तो हिरण्याक्ष ने भी सोना निकाला था, हम लोग भी सोना ही निकाल रहे हैं, तो उस वजह से ऋतुएं और अलग अलग टाइम पे आ रही हैं। और ऊपर से जो आसुरिक प्रवृत्ति जो बढ़ रही है तो उसकी वजह से भी और गड़बड़ होगी। तो उस चीज को सबको रोकने के लिए ही जरूरी है प्रभा जी ने जो संस्था बनाई, ये संकीर्तन आंदोलन शुरू किया है, जो चैतन्य महाप्रभु ने किया और प्रभा ने आगे बढ़ाया, वो इसी के लिए हम पृथ्वी के साथ हारमोनी में रहें। अगर भक्त लोग बढ़ते हैं, ज्यादा भक्ति करते हैं तो पृथ्वी अपने आप सारी चीजें दे देगी, पृथ्वी का बहुत कुछ है, पर हम जबरदस्ती जो निकालना चाहते हैं बिना अथॉरिटी के, उससे जो है फिर आगे गड़बड़ होगी, वही हो रही है। तो आज के दिन वराह द्वादशी है, भगवान वराहदेव का आविर्भाव दिवस है, तो जिस समय भगवान वराहदेव गर्भोदक सागर के अंदर जाके, और वह भगवान वराहदेव के रूप में क्यों आए, क्योंकि वराह जो है कीचड़ में जाता है, वहां जाके भी खाने की चीज ढूंढता रहता है, तो पृथ्वी जो नीचे तक चली गई थी तो नीचे से निकाल के लाने के लिए भगवान को वराह रूप में आना पड़ा। तो जिस समय भगवान वराह देव गर्भोदक सागर में गिरी हुई पृथ्वी को निकाल के ऊपर लेके आए हैं और उसको अपनी कक्षा में स्थित किया है, उसी तरह आज के दिन हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मेरा हृदय भी एकदम गंदा है, उसके बॉटम में थोड़ा ज्यादा गंदगी है, इतने सारे नट भरे पड़े हैं, पर किसी तरह जैसा बताया गया है कि हर एक के हृदय में कृष्ण प्रेम तो है नहीं? तो आप जो है मेरे हृदय में प्रकट होके नीचे तक जाके ही कृष्ण प्रेम को ऊपर लेके आए, मेरे में कोई शक्ति नहीं, आपकी कृपा से ही होने वाला। याद हमें प्रार्थना कर रहे हैं, जिस तरह आपने पृथ्वी को लेके आए और पृथ्वी को अपनी कक्षा में रखा तो अंदर तो बहुत गंदगी है, गर्भोदक सागर से भी ज्यादा गंदगी अंदर है, इतने सारे अनर्थ भरे पड़े हैं, इतनी सारी वो इच्छाएं हैं कि मैं ये कंट्रोलर बनूं, प्रोप्राइटर बनूं, एंजॉयर बनूं, वो कृष्ण प्रेम तो पता नहीं कहाँ है, कहाँ डूबा हुआ पता नहीं हमें। तो भगवान ही जो है इसके अंदर जाएं और कृष्ण प्रेम को लेके आए, तभी कुछ संभव है, तभी कुछ हो सकता है। तो आज जो है भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, और भक्तों का संग जो हमेशा मिलता रहे। तो भगवान का खुद का पुत्र भी असुर बन गया था, तो हमें भी भगवान कृपा करेंगे अपने भक्तों के संग में ही रखें ताकि हम में वो आसुरिक प्रवृत्ति जो है वो तो खत्म हो जाए कम से कम, और फिर और मन डेवलप। तो ये आज एक दिन हमें मानना चाहिए, यहीं पे विराम देते हैं। किसी के प्रश्न है या क्वेश्चन कमेंट? यस सर। हाँ, श्वेत वराह स्वयं भुवा मनु के समय थे, ये रक्त वराह जो चक्षुष मनु के समय की ये कथा जो है भागवत में बताई गई।
मथुरा में दो प्रकार के वराह,
मथुरा में। मुझे जब नहीं पता वो मथुरा के पंडितों से पूछ सकते हैं। वैसे ये बोला जाता है ना, जब भी पूजा कराते हैं श्वेत वराह कल्प पे जामुद्री पे, तो एक कल्प जो है श्वेत वराह का, ऐसे बोला जाता है। और फिर हम सब कहने लगते हैं यथाशक्ति यथाशक्ति दे वो तो बहुत कुछ मांगना शुरू हो जाते कम से कम इस्कॉन में आने के बाद ये फायदा तो हो गया, इतना तो पता लिया था, शक्ति बोल देना भाई, टाइम पे बोल देना नहीं तो वो तो कहेगा 1500 रुपया दो ये दो वो तो। हाँ जी प्रभु जी, नहीं उसमें थी नहीं, उसमें मनु से कहा गया था ना आप जो है पृथ्वी को भरो, तो उन्होंने कहाँ से भरो, पृथ्वी कहाँ है, तो अभी थी नहीं उसमें। किसी और लोग वैसे ही बताया गया कि वो विश्राम घाट पे जो पृथ्वी के ना मथुरा, तो विश्राम घाट पे ही वरादेव आए थे, फिर वहां पृथ्वी को स्थापित किया। और फिर चूंकि जैसे सुअर है अगर पानी से निकले ना तो अपने शरीर को इससे झंझोड़ता है, तो उनके उनका एक बाल गिर गया था, उस बाल से जो है कुशा घास प्रकट हुई जो कि हर यज्ञ में इस्तेमाल की जाती है, उनके एक बाल से बनी है। वैसे समय आप कुछ कहना चाहेंगे? हालांकि रुक्मिणी कृष्ण प्रभु का आदेश तो बहुत बार होता है, पर मैं इतना निकम्मा नहीं पाता हूँ पर अच्छा आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत समय बाद राधा राधिका रमन जी के और कृष्ण बलराम के दर्शन हुए। कृपा बनाए रखें ताकि मैं जल्दी जल्दी आता रहूँ और आप लोग भी, आपसे भी प्रार्थना है गुड़गांव आते रहिए आप लोग भी कभी कभी। और कल जो है नित्यानंद प्रभु का आशीर्वाद दिवस है, ये तो पूरा ही एकादशी फास्टिंग भी हो रही है फीस्टिंग भी हो रही है और इन दोनों के आविर्भाव के साथ साथ और कुछ ही समय बाद वैलेंटाइंस डे भी आ जाता है तो एक बार तो ऐसा हुआ था बहुत साल पहले की बात, नित्यानंद त्रयोदशी जो वैलेंटाइंस डे 14 फरवरी को ही थी। हालांकि वैलेंटाइंस डे का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है हमारे शास्त्रों में पर लोग उसको ज्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, नहीं ज्यादा जोर शोर से मनाते हैं, पर असली प्रेम तो नित्यानंद प्रभु ने देना है। चैतन्य महाप्रभु ने भी वो प्रेम नहीं दिया जो नित्यानंद प्रभु देते, हालांकि उसकी कथा तो कल प्रभु जी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं भट कर रहे हैं। महाप्रभु तो कहते हैं कृष्ण नाम लो, पर नित्यानंद प्रभु तो भागकर उस व्यक्ति के पीछे जाते हैं जो नहीं ले रहा, महाप्रभु नहीं जाते भागकर नित्यानंद भागकर जबरदस्ती पकड़ के लो कृष्ण नाम लो, गौरांग का नाम लो, ये ज्यादा कृपा। और उससे भी ज्यादा कृपालु है श्रील प्रभुपाद, नित्यानंद प्रभु ने तो बंगाल ओडिशा में प्रचार किया था, हालांकि लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के नाम दिया वो बंगाल ओडिशा में दिया, प्रभुपाद तो ये सब छोड़ के बाहर चले गए, उनको दिया जो तो कुछ जानते ही नहीं थे। अगर प्रभुपाद नहीं आते तो ये तो नाम बंगाल ओडिशा में कहा जाने वाला था, पंजाबी वाक में कहां से आता प्रभुपाद के उनके शिष्यों की वजह से ही तो फिर आगे फैला है पूरे संसार में। तो ये प्रभुपाद की कृपा, पर उनकी उनके पास जो कृपा जो है वो शक्ति जो नित्यानंद प्रभु की है कि जबरदस्ती लोगों के पास जाके हम लोगों को मैराथन में तो लोग कहते ही है ना क्यों सड़कों पे आगे बुक्स मारते हो, कितना सुनने को बहुत मिलता है। अब ये तो हमारा फैमिली बिजनेस है क्या जबरदस्ती जाके देते हैं लोग, रथ यात्रा निकालते हैं कितना कुछ सुनने को मिलता है, अरे सारा ट्रैफिक जाम कर दिया, नॉइस पॉल्यूशन करते हो, ये करते हो, वो करते हो, गन फैला देते हो रोड्स पे। पर ये लोग जो जगन्नाथ जी का दर्शन करने नहीं आने वाले उनको हम जब दर्शन देते हैं जाके लो करो हरिनाम सुनो प्रसाद लो डोनेशन भी दो वही भक्तों की कृपा होती है उनके ऊपर जबरदस्ती करनी पड़ती है नहीं सुधरेंगे। समय नहीं का बहाना है बस और कुछ नहीं, समय तो पूरा है। वो तो कहते हैं बीमार हो जाए हॉस्पिटल जाने का समय निकलेगा कि नहीं समय सारा है, प्रायोरिटीज गलत है। भक्त लोग तो कृपा करते हैं ना, और ये सारी कहां से शक्ति आ गई, नित्यानंद प्रभु से, ये उन्हीं की शक्ति है। अभी कह दो शाहरुख खान का कॉन्सर्ट है सारा समय निकल सारा समय वो कह दो फ्री में फ्रंट सीट मिलेगी सुबह से जाके बैठ जाएगा ऐसा नहीं है, समय नहीं है।
इसलिए भगवान को मंदिर से बाहर
निकलना पड़ता है ना, कृपा करते हैं ना, और भक्त लोग भी तो करते हैं ना, वही ऑर्गेनाइज हो गए भक्त लोग ही करते हैं, कृपा ही तो कर रहे हैं भक्त। पर ये क्या से आ रही है, नित्यानंद प्रभु की शक्ति, और कल जो है उनकी शक्ति और ज्यादा हम प्रार्थना कर सकते हैं। आविर्भाव दिवस जब होता है तो ज्यादा कृपा होती है उनकी, जो ज्यादा शक्ति दे सकते हैं।
मुझे नहीं लगता है कि जो संसार के सुप्रीम पावर है उनको अपने घर से बाहर निकलने की जरूरत है, बल्कि हमें उनके पास आकर आना
चाहिए वाली बात नहीं हो पाती ना, करना तो बहुत कुछ चाहिए, होना तो बहुत कुछ चाहिए माता जी आश्रम से भी बिना कहे भक्तों को मंगल आरती में आ जाना चाहिए, सेवा के लिए बिना कहे लग जाना चाहिए, नहीं होता वो भक्त लोग ना मैनेजमेंट पे कृपा करते हैं एक्चुअली, उनको और ज्यादा हम्बल और टॉलरेंट बनाते हैं ये मैनेजमेंट यहाँ पे पक्का पूरा दिख जाता है कैसे हो सकता है वैसे थ्योरेटिकल रहता है। तो जिसको ज्यादा टॉलरेंट हम्बल बनना है गुड़गांव टेंपल प्रेसिडेंट बन जाओ कोई है वॉलंटियर्स एक महीने के लिए 15 दिन के लिए सीधी सी बात है मैनेजमेंट में होगा क्या, नीचे वाले आपकी बात सुनेंगे नहीं और ऊपर वाले डांटते रहेंगे कि नीचे वाले क्यों नहीं सुन रहे तुम निकम्मे हो क्या करोगे। और ये भक्त में कृपा करते हैं ना, तो इसीलिए भक्त लोग आगे जाके कृपा करते हैं लोगों पे जो निकलना नहीं चाहते ये सारी कृपा वहीं से आ रही है, सोर्स नित्यानंद प्रभु। फिलॉसफी एकदम क्लियर है हरे कृष्ण ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की श्री वराहदेव आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की श्रील प्रभुपाद की गौर वृंदावन।